ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. तो आप सबका आज के 31 जुलाई के संध्या जागृति कार्यक्रम में स्वागत है. हरे कृष्णा. आप सबका बहुत धन्यवाद है. जो लोग पीछे बैठे हैं वो इधर आके बैठे, इधर इधर इस तरफ. श्री जगन्नाथपुरी के विषय में आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ. जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो दो प्रकार का निर्माण होता है भगवान का. भगवान के सृष्टि के निर्माण के दो प्रकार होते हैं. एक है सर्ग और दूसरा है उपसर्ग. क्या बताया मैंने? सर्ग यानी प्राथमिक निर्माण और उपसर्ग यानी द्वितीय निर्माण, सेकेंडरी एक्सपांशन. तो सर्ग में ब्रह्मा, सर्ग में विष्णु भगवान जो हैं उनके नाभि से कमल निकलता है. उसके पहले एक और विष्णु होते हैं, उसका नाम क्या है किसी को पता है? महाविष्णु. उनका और एक नाम है कारण उदक सागर विष्णु, कारण उदक शायी विष्णु. उनके शरीर के रंध्रों में से, छिद्रों में से ब्रह्मांड निर्माण होते हैं. एक एक छिद्र में से एक ब्रह्मांड निर्माण होता है, उसको कहते हैं सर्ग, प्राथमिक निर्माण. और वो जो ब्रह्मांड है वो पहले बीज रूप में होता है, फिर वो बड़ा होता है. तो उसके अंदर एक और विष्णु निर्माण होते हैं, उनका नाम क्या है? गर्भ उदक शाही विष्णु, उसको ब्रह्मांड कहते हैं. अभी बहुत सारे निकल गए, उसमें से एक आपने पकड़ा है. उस एक में एक विष्णु निर्माण होते हैं, ऐसे हर एक में होते हैं. तो उसमें जो विष्णु निर्माण होते हैं उनके नाभि से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा का जन्म होता है. आया समझ में आपको? वैसे कितने ब्रह्मा हैं बोलो, कितने ब्रह्मा हैं और क्यों हैं? आपने कहा अनंत ब्रह्मा है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना जितने छिद्र हैं उतने ब्रह्मांड निकल रहे ना, और हर एक में एक ब्रह्मा जी निर्माण हो रहे हैं, हर एक में एक विष्णु निर्माण हो रहे हैं और हर एक विष्णु के नाभि से एक ब्रह्मा निर्माण हो रहे हैं. तो हमारे जो विष्णु हैं जिस विश्व में हम लोग रह रहे हैं वो ब्रह्मा जी को चार मुख है, क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि तो हमारे ब्रह्मांड में प्रमुख चार दिशाएं हैं, फोर डायमेंशंस, फोर डायरेक्शंस। तो हर एक दिशा में एक ब्रह्मा का मुख जो है वो देख रहा है, सुपरवाइजिंग, पर्यवेक्षण कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि चार ही मुख वाले ब्रह्मा होते हैं? नहीं, हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। किसी के सर पे, कंधे पर 8 सर हैं, किसी के कंधे पर 10 सर हैं, किसी के सर पर 100 है, किसी के सर पर 1000 है, किसी के सर पर 10,000 सर है। कैसा दिखता होगा वो ब्रह्मा? तो ऐसे उन्नत उन्नत एडवांस्ड ब्रह्मांड इस विश्व में मौजूद है। भगवान ने जो निर्माण किया ना, वो हम लोग केवल इतना ही देख सकते हैं। जैसे रात के अंधेरे में जो कीटक जन्म लेता है, और रात का अंधेरा समाप्त होने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए सृष्टि का मतलब क्या है? अंधकार ही अंधकार है। वो क्या कहेंगे कि अंधकार ही अंधकार है, कितनी सारी पीढ़ियां गुजर गई फिर भी रात समाप्त नहीं होती है। तो क्या कहते हैं, तो सृष्टि में तो लाइट है ही नहीं, लेकिन आप लोग मनुष्य हो, आपको रात को सोते हो, दिन में जगे रहते हो, तो आपको पता है कि सूरज भी आता है और चांद भी आता है, प्रकाश भी आता है और अंधेरा भी होता है। लेकिन ये भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो परफेक्ट नहीं है। इसके आगे बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, भारत देश ही है बस, दुनिया में और कोई है नहीं। लेकिन और आप बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप भी है, और उसके ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि खाली अर्थ नहीं है, पर चांद भी है, वो गुरु भी है और मंगल भी है। फिर बाद में बोलेंगे एक सूर्यमाला नहीं है, ऐसे अनंत सूर्यमाला है। हमारा साइंस भी प्रूव कर चुका है, हमारे ग्रंथों में तो लिखा ही लिखा है, लेकिन साइंस ने भी ये प्रूव कर लिया है कि हमारी जो सौरमाला है वो एक ही नहीं है, ऐसे अनंत सौरमालाएं हैं, सोलर गैलेक्सी, ऐसे अनेक सेट्स हैं, ऐसे सूर्य और सारे ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सेट्स आकाश में घूम रहे हैं। उसके परे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके परे ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के परे जाएंगे तो ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। तो किसमें रहते हैं ऐसे अनंत ब्रह्मांड? उसको कहते हैं अवकाश, उसको कहते हैं स्पेस। स्पेस में क्या शक्ति होती है? स्पेस में होल्ड करने की शक्ति होती है। स्पेस जो है वो जितने ब्रह्मांड है उसमें मिक्स नहीं होता है, स्पेस अलग रहता है, ब्रह्मांड उसमें रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल के ब्रह्मांड हैं, और ऐसे अलग लेवल के ब्रह्मांड में जितने वो एडवांस्ड है उतना एडवांस ब्रह्मा है, उतने सर है उनको। एक बार ऐसे ही द्वारका में हमारे ब्रह्मा भगवान कृष्ण को मिलने आए पृथ्वी पर, क्योंकि तो भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए थे ना लीला करने के लिए। अब आगे आ जाना इधर, ऑल ऑफ यू कैन कम इन फ्रंट, यू ऑल्सो कम, क्योंकि जितना दूर रहेंगे उतना केवल सोने का ही इंतजाम है, जगह रहने का इंतजाम आगे है। बैठिए। तो मैं क्या कह रहा था बताइए, द्वारका में हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कृष्ण को मिलने आए। तो द्वारपाल होते ना, जय विजय, उन्होंने पूछा कौन हो आप? कौन हो का मतलब क्या है? ब्रह्मा है। तो वो भगवान को बताने गए अंदर कि भगवान ब्रह्मा जी आपको मिलने आए हैं। तो भगवान उसको पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा? लॉजिकल क्वेश्चन है ना, वो तो सब जानते हैं उनके पास कितने अधिकारी कितनी जगह काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। बोले कौन से कंपनी का? जिसके पास बहुत कंपनियां पूछेगा ना, कौन से कंपनी का मालिक है या अधिकारी है, प्रमुख है। तो वो द्वारपाल बाहर आके पूछते ब्रह्मा को कौन से ब्रह्मा? तो ब्रह्मा पूछते व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका? मैं ब्रह्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, मतलब और कोई ब्रह्मा होता है क्या? नहीं, कोई नहीं है। मतलब उनको पता है ना कि उनके पूरे ब्रह्मांड में वो अकेले ब्रह्मा है, और कोई ब्रह्मा नहीं है, दूसरे दूसरे ब्रह्मा कोई है नहीं इधर, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसा कोई नहीं है, एक ही लेवल है और एक ही ब्रह्मा है। तो वो अंदर चले जाते हैं। ये प्रश्न मन में लेते हैं, ऐसे क्यों पूछा भगवान ने ये कौन से ब्रह्मा? जब तक वो भगवान के पास पहुंचते हैं उतने समय में भगवान मन से सारे ब्रह्माओं को बुलाते हैं, जितने ब्रह्मांड हैं। खाली चार वाले ही तो आगे खड़े हो गए, लेकिन ऐसे हजारों लाखों वाले भी आ जाते हैं उधर, और सब वहां प्रकट हो जाते हैं। और ये ब्रह्मा जो ब्रह्मा बनकर आए थे ना, वैसे उनको लगा कि मैं कौन से कोने में एक अणु मात्र हो गया मैं एकदम, इतने ब्रह्मा देखे उन्होंने। जैसे किसी स्कूल में, गांव के स्कूल में जो फर्स्ट आता है कितने मार्क ले, 61%, और वो स्कूल में फर्स्ट है, तो एक बार शहर में वो जॉइंट क्लास में आता है तो क्या देखता है कि बहुत सारे विद्यालय के फर्स्ट नंबर आए हैं और एक फर्स्ट को 98% मार्क है, तो उसको कैसा लगेगा, अरे मैं तो इतना चूहा भी नहीं हूँ। वैसे उनको फीलिंग हो गया कि मैं इतना अकड़ के आया था कि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे से कितने बड़े 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 ब्रह्मा जी हैं, इधर बैठो। तो फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि भगवान ने ऐसे क्यों किया। तो बाकी सब ब्रह्माओं ने भगवान को पूछा कि भगवान क्या आज्ञा है, आपने हमको बुलाया हम आ गए, क्या आज्ञा है? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक हो ना, ऐसा पूछने के लिए बुलाया था। तो वैसे हमारे ब्रह्मा हैं, बहुत महान है वो, लेकिन महानता वहां समाप्त नहीं होती है, उसके आगे भी बहुत महानता है। तो वो ब्रह्मा जो है, जहां तक ब्रह्मा जी का जन्म होता है वहां तक जो निर्माण है उसको सर्ग कहते हैं। बहुत सारे ब्रह्मांड निर्माण हो गए, एक ब्रह्मांड के अंदर विष्णु निर्माण हो गए, विष्णु के नाभि से कमल निर्माण हो गया, उसमें ब्रह्मा का जन्म हुआ, यहां तक का निर्माण जो है उसको सर्ग निर्माण कहते हैं। फिर ब्रह्मा क्या करते हैं, वो जो विष्णु के जिसके नाभि से वो आए हैं उनसे वो 24 तत्व लेते हैं, और 24 तत्वों से लेकर इतने कितने शरीर यहां पर बनाए भगवान ने, है ना, आपने वो सब बनाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, समझ में आपको आया? और ऐसा सुंदर करते हैं मैन्युफैक्चर कि है सब लोग आप पुरुष मनुष्य, है सब लोग आप स्त्री, लेकिन देखो कोई सेम है क्या इसके अंदर, सबके फोटो निकाल के देखो, आईने में देखो, जुड़वा भाई भी सेम नहीं रहते, दिखते सिमिलर लेकिन सेम नहीं रहते, इतना सुंदर निर्माण है उनका। एक ही माँ के गर्भ से जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी लड़की अलग दिखती है, लड़का अलग दिखता है, भाई भी अलग दिखता है, जुड़वा भी अलग दिखता है। तो उसके आगे वो कौन से तत्व हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं ऐसा लगता है आपको, लेकिन ये सब जानना जरूरी थोड़ा सा। ये हमारी पांच महाभूत है ना, पंच महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल, अग्नि, ये पांच तत्वों से लेकर वो अपना शरीर बनाते हैं। फिर पांच इंद्रियां जोड़ देते हैं उसके अंदर, कौन से, आँख, कान, जीवा, त्वचा और नाक, है ना, ये स्पेशल सेंसेस हैं। वो पंच महाभूत से बनाते, लेकिन पंच महाभूत वही चमड़े से बना ना, लेकिन ये चमड़े से, ये तो उसको नाक कहते हैं, ये चमड़े से बना वो उसको तो कान कहते हैं, ये चमड़ी को ही त्वचा कहते हैं, कितना अलग अलग है ना। आँखों, वो भी चमड़ी ऊपर है उसके, लेकिन वो आँख का काम करती है। तो पंच महाभूत ही है वो, लेकिन उसको एक तरह से बनाया तो कान बन जाता है, एक तरह से बनाया तो उसका नाक बन जाता है। फिर वो पांच जो अवयव है उसके लिए विषय बनाते हैं। आंखों का विषय क्या है, दृश्य, दृश्य मतलब आंख क्या देखता है, दृश्य देखता है। कान का विषय क्या है, ध्वनि, कान सुनता है ना, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई शोर शोर कर रहा है, तो कान का विषय क्या है, ध्वनि, ध्वनि आवाज। नाक का विषय क्या है, गंध, यानी नाक सूंघता है ना, कोई बदबू है, खुशबू है, कोई गुलाब की खुशबू है, कोई कमल की खुशबू है, कोई और किसकी खुशबू है, कोई स्प्रे की खुशबू है, अलग अलग खुशबू है, लेकिन है अलग, दुर्गंध भी अलग अलग है, ये खाना सड़ गया उसकी बदबू अलग है, और कोई उधर जानवर मर गया तो उसकी जो बदबू अलग है, कोई पेड़ गिर गया और सड़ गया तो उसकी बदबू अलग है, तो बारिश में जो घर में बदबू होती है वो अलग होती है ना। तो नाक का विषय क्या है, गंध। त्वचा का विषय क्या है, वस्तु है ना, अभी ये ठंडा है कि गर्म है, ये चौकोनी है, ये लंबा है, ये कांच का है, स्पर्श, ऐसे पांच विषय पैदा कर देते हैं दुनिया में। उसके बाद में मन, बुद्धि, अहंकार निर्माण करते हैं, वो भी आपको दे देते हैं आपके कर्म के अनुसार, मन, बुद्धि, अहंकार। ऐसे करके 24 एलिमेंट होते हैं, और 24 एलिमेंट से आप बनते हो। तो ये ब्रह्मा जी कितने कितने, उनके अंदर कितनी बुद्धि होगी आप सोचो जरा, कैन यू इमेजिन। हम लोग अब समझो, आप लोगों ने घर पे आलू का सब्जी बनाया, समझो और आपकी सब्जी आलू की सबको पसंद आती है, आप बहुत तारीफ करते हैं कि अरे मीनू ने जो आलू सब्जी बनाया तो सब लोग पागल हो जाएंगे इसको खा के, है ना। तो वो तो छोटी सी वस्तु है, इतने सारे लोगों का निर्माण करना, इतने सारे लोगों में इतने सारे मनुष्य ही नहीं, हाथी भी है उसके अंदर, पंछी भी है, बहुत सारी जीव है, सबको निर्माण करते हैं वो अलग अलग, हर भी अलग अलग, चार ब्रेन है उनके पास, और चार ब्रेन इतने क्या कहते हैं उसको, सुपर फाइन, सुपर इंटेलिजेंट, उसके अंदर पूरी दुनिया बनाने का सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं उसको इंस्टॉल किया गया है। इमेजिन कितनी बुद्धि होगी उसके अंदर, इतने क्या कहते हैं एडवांस्ड जीव है वो, प्रगत एकदम उन्नत जीव है। तो वो जो उन्नत जीव है उनके अंदर, वो इतने उन्नत होने की वजह से उनके अंदर दया भी बहुत है। जब वो देख रहे हैं कि मैं निर्माण कर रहा हूँ, तो आप पूछेंगे ना, समझा अभी समझा आपके घर में किसी साड़ी का फैक्ट्री है, और बच्चा देख रहा है कि साड़ी बनाए जा रहे हैं, 1, 2, 50, 1000, 2000, तो बच्चा पूछेगा ना कि इतना साड़ी क्यों बना रहे हैं, मम्मी तो एक ही है घर पे। तो नहीं बेटा, इसको बेचने के लिए बनाया है। वैसे भगवान ने बोला कि आपको ये सब 24 तत्व लेके सब जीव को बनाना है, तो वो भी पूछेगा ना कि भैया क्यों बनाना है सब, इतने लोगों को क्यों बनाना है। तो उन्होंने बताया कि जो जीव मुझसे संघर्ष करते हुए मेरे स्वामित्व को छोड़कर, मेरे सार्वभौम पद को त्याग कर खुद स्वामी बनने के लिए छोड़ के जाते हैं मुझे, वो ये सब लोग हैं। मतलब ये और ये भी सब लोग। तो उनको लगता है फिर क्या होगा इनका, बोले ये इस दुनिया में आएंगे, एक टेम्पररी शरीर बनाएंगे उनके लिए, हम जो मैं बना रहा हूँ ना, उनको पता है कि मैं जो बना रहा हूँ क्या है, तो मोबाइल बनाता है उसको मालूम है 2 साल का लाइफ है इसका, बनाने वालों को पूरा पता होता है क्या होता है वो। फ्रिज जो बनाता है पुराने जमाने में 20-20 साल चलता था, आज जो फ्रिज बनाता है बनाने वाले को मालूम है कि ये बनाया है इसलिए कि 3 साल के ऊपर वो चलना नहीं चाहिए, और उसका रिपेयरिंग पार्ट मिलना नहीं चाहिए, और बिगड़ गया तो नया ही लेना चाहिए, ऐसा ही बनाते हैं उसको। तो वैसे ब्रह्मा जी जो बना रहे हैं आप जैसे हमारे लोगों को, उनको पता है कि टेम्पररी काम है सब ये। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, तो कहते हैं इनको ना जन्म लेना पड़ेगा, फिर उस और क्या होगा, उस बाद में बूढ़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद में बीमार हो जाएंगे, उसके बाद में एक दिन मर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर दोबारा आप नया डिजाइन बनाएंगे, है ना। एक साड़ी फट गई तो फेंक देने का, दूसरा पहनने का उसके लिए, एक मोबाइल बिगड़ गया तो थ्रो इट अवे, बाय न्यू वन, यूज एंड थ्रो। तो उनको बड़ा दुख हो गया, तो कहते बड़े इतने सारे तकलीफ भोगेंगे, मैं जिन शरीरों को बनाने जा रहा हूँ, जिन लोगों को जिंदगी दे रहा हूँ, वो सब लोग तड़पने ही वाले हैं इस दुनिया में, जो दुनिया भगवान ने बनाई है, जिसमें मैं भी आया हूँ, और मैं जिनको जिनको निर्माण करने जा रहा हूँ, वो सब लोग तड़पने वाले हैं। तो उनको बहुत दुख हो गया, तो बहुत रोने लगे वो, तो रो के वो जिन्होंने उनको बनाया उनके पास गए, बोले भगवान मुझे बहुत दुख हो रहा है, इनको कैसे बचाऊं मैं, मुझे बहुत इनको, इनका आगे क्या होने वाला है देखकर बड़ा दुख होता है। पता है ना, कभी कभी आपको देखकर आपके माता पिता को दुख होता है कि नहीं, ये बेचारा पढ़ाई नहीं कर रहा है, 40% भी नहीं ला रहा है, अभी कैसा आगे जाके MSc करेगा, BSc करेगा, ऐसा जॉब मिलेगा इसको, है ना। तो वो जब आप नहीं पढ़ाई कर रहे तो अभी अभी क्या है, रिजल्ट थोड़ी लगा अभी, लेकिन आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा उनको पता है, वो देखकर वो अभी रो रहे हैं कि भाई इसका भवितव्य तो अंधेरे में गया अभी, उसी तरह से वो रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इनके लिए कुछ उपाय है क्या बचाने का। तो भगवान ने कहा डोंट वरी, मेरा एक धाम है जिसको पुरुषोत्तम धाम कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, श्री क्षेत्र कहते हैं, जगन्नाथपुरी कहते हैं, वहां पर मैं नील माधव के रूप में रहता हूं, और उस जगह पर जो भी जन्म लेते हैं वो दोबारा दुनिया में लौट के नहीं आते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हो गया, बहुत सा स्ट्रेस था मन में, रिलीफ हो गया, बोले चलो मैं जाके नील माधव को देख सकता हूँ आपके रूप को, और हाँ आप जाके देख सकते हो। तो ब्रह्मा जी आ गए फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जो आज का जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे थे नील माधव का लक्ष्मी जी के साथ, और इतना सुगंध फैला हुआ था सब जगह पर, जो सृष्टि वो बना रहे थे वो सब जगह दुर्गंध फैल रही थी, लेकिन जब वो वहां चले गए तो सब जगह सुगंध ही सुगंध, सुंदर हवा बह रही थी, मंद मंद शीतल सुगंधित हवा, और दर्शन कर रहे हैं ऐसा प्रकाश है कि हजारों सूर्य, जो सूर्य वो निर्माण करते हैं ना ब्रह्मा जी, उसके बाद में सूर्य को भी निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसे हजारों सूर्यों का प्रकाश भगवान के शरीर से आ रहा था, इतना सुंदर दृश्य था। उधर एक कुंड था, उसका नाम रोहिणी कुंड था, उसके बाजू में एक कल्पवृक्ष खड़ा था। कल्पवृक्ष का मतलब क्या होता है बताएंगे आप में से कोई? यस, कोकोनट ट्री। वो कह रहे हैं कोकोनट ट्री। हाँ, हमारे गांव में कोकोनट ट्री को कल्पवृक्ष बोलते हैं, ये बात सही है, लेकिन कल्पवृक्ष कोकोनट ट्री नहीं है। कल्पवृक्ष की व्याख्या एक ही बार सुन लो आप फाइनल। कल्पवृक्ष का मतलब है जो भी आप इच्छा करोगे, आपकी कल्पना में कितनी इच्छा हो सकती है, चलो मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, चलो ये आपकी कल्पना वहां तक पहुंचती, वो सारी इच्छाएं पूर्ण करने की क्षमता रखता है। पेड़ पेड़, हाँ, कल्प वृक्ष, उसके सामने खड़े होकर आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूर्ण कर देता है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और एक होता है कामधेनु, वो क्या होता है? गाय। उसको कामधेनु क्यों बोलते हैं? जो भी इच्छा आप प्रकट करेंगे उसके सामने वो उसको पूरा कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी विश्वामित्र मुनि लाखों सैन्यों को लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भोजन करने के लिए आए, तो उनको लगा अरे ये झोपड़ी के अंदर क्या है, हमारी इतनी बड़ी सेना। वशिष्ठ मुनि बोले आइए 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 भोजन कीजिए, सब लोग बैठिए भोजन कीजिए। तो वो सोच रहे कि कैसा हो सकता है, नहीं नहीं आप चिंता मत करना, आप यू जस्ट सिट डाउन, आपका स्नान करके आना, बैठ जाना, तब तक भोजन तैयार रहेगा। तो लाखों लोग आते हैं तो सबके लिए ना 25-25 आइटम भर भर के तैयार रहते हैं, और सब लोग खा खा के थक जाते हैं, लेकिन आइटम समाप्त नहीं होते, और बीच में कोई समय ही नहीं था। तो वो और आश्चर्य होते हैं उनको, अरे महाराज जी आप तो झोपड़ी में जंगल में रहते, इतना सारा खाना कहाँ से लाया आपने? तो वो बोर्ड दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं, ये मेरी गाय है कामधेनु, ये सब सप्लाई कर देती है। हाँ, तो आप इससे क्या लेते हो? कहते मुझे जो थोड़ा बहुत चाहिए यज्ञ के लिए घी चाहिए, उसका दूध के देती है वो, पर हम लोग तो जड़ी बूटी खाते हैं, हम ज़्यादा खाते नहीं, लेकिन जब आप जैसे मेहमान आते हैं तो उनके लिए पंच पकवान भी बना देते हैं, सब गाय देते हैं। अभी देखो खाना तो ठीक हो गया, विश्वामित्र को लगा कि अरे मैं तो राजा हूँ, ये तो साधु है, राजा मतलब पूरे विश्व को चलाने वाला है, मैं सबको भोजन करता हूँ, सबकी व्यवस्था करता हूँ, सबकी खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था मेरे पास है, तो ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। अब वैसे भी मैं राजा हूँ तो मेरा अधिकार इसके ऊपर है, प्रजा के पास जो मूल्यवान वस्तु है सब राजा की होती है, तो उसको ईर्ष्या उत्पन्न होती है। एक सिंपल ब्राह्मण के पास में ऐसी गाय तो मुझे भी दंग करके रह गई, वो इतना खाना खिला के, तो वो मेरे पास होनी चाहिए। तो पहले वो नम्रता से बोलता है कि मुझे वो गाय दे दो, तो वशिष्ठ मुनि बोलते नहीं मैं नहीं गाय दे सकता आपको, क्योंकि मेरे झोपड़ी में जो भी यज्ञ वगैरह करना है मुझे ज़रूरत है, वो मेरी गाय है। तो वो ज़बरदस्ती करता है उसको, जय चाहिए, और गाय को ऐसे पकड़ के ले जाने का प्रयास करता है, तो गाय के सारे अंगों में से, सारे पैरों में से लाखों सशस्त्र सैनिक पैदा होते हैं, और वो कुछ ही क्षण में विश्वामित्र को परास्त कर देते हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र बंदी बन जाते हैं। बोलो, तो वो है कामधेनु, वो जो जरूरत है, वो जिस समय क्या चाहिए आपको, उस समय वो अपने स्वामी के लिए प्रकट कर देती है, वो कामधेनु। तो ऐसा एक कल्पतरु, कल्प वृक्ष वहां पर खड़ा है, उसके नीचे कुंड है, रोहिणी कुंड, उसमें से एक कौवा ऐसे उड़ते उड़ते आता है और उसमें अपनी चोंच डालता है पानी पीने के लिए। चोंच का रोहिणी कुंड को स्पर्श होते ही वो कौवे का रूपांतर वैकुंठवासी विष्णु दूत के शरीर में होता है, वो चतुर्भुज विष्णु दूत बन जाता है, और तुरंत वहां से गरुड़ आता है, और वो चतुर्भुज बने हुए, पहले कौवा था अभी विष्णु दूत बना हुआ, उसको कंधे पे बिठाकर वैकुंठ में ले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं तो उनके पीछे उनको निर्माण किए हुए यमराज भी आ जाते हैं और शिव जी भी आ जाते हैं। तो यमराज पूछते हैं अरे ऐसे अगर कव्वे जैसा पतित जीव का उद्धार हो गया तो हमारा काम क्या है फिर, आपने इतना बड़ा कायदा बना के रखा है, इसने अच्छा किया तो इतना फल देने का, बुरा देने का दंड देना है, और दंड देकर कहाँ भेजना है, सजा देकर कहाँ भेजना है, अच्छे फल देकर कौन से स्वर्ग लोग भेजना है, इतना पूरा आपने सिस्टम बना के रखा है, और यहाँ पर जो कोई निचला जाति का जीव कौवा बनकर जी रहा है वो स्पर्श करते ही सीधा वैकुंठ लोग पहुँच गया, तो हमारा बीच में काम क्या है ना? तुम्हारे सामने अटल, पुलिस के सामने एक अटल गुंडा लेके आए, और राजा ने उसको बड़ा प्रेम से बोला कल से प्रधानमंत्री बन जा, तो पुलिस बोलेगा फिर बड़ा काम क्या है ना? सोचेगा ना वो कि मेरे हिसाब से इसको तो दंड देना चाहिए, कोर्ट केस चला के उसको 20 साल सजा, 2 लाख दंड और 50 पटके देने चाहिए वगैरह वगैरह, कायदा तो आपने बनाया है, और ऐसे आदमी को मेरे सामने लाने के बाद वो करने के बदले माँ बोल रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, तो कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया है, करप्शन हो गया है। तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मी देवी कहते हैं, भगवान नहीं कहते, लक्ष्मी देवी ब्रह्म यमराज को बताती है वो तुम्हारा जो काम है ना वो ये इलाके में नहीं है, तुम्हारा जोन अलग है, उस जगह पर तुमको लोगों को पकड़ के दंड देना है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसमें तुम्हारा कुछ काम नहीं, आना ही है ना आपको अगर, तो भजन करने के लिए आ जाओ, अपना ड्यूटी देने के लिए मत जाओ यहाँ पर, ऐसा बताते हूँ। तो ऐसे प्रश्न वो लेवल पे भी होते हैं बाय द वे। हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी को और लक्ष्मी यमराज जी को और शंकर जी को लक्ष्मी जी पूरा महात्म्य सुनाती है पूरा, कि पुरुषोत्तम क्षेत्र क्या है, ये नील माधव जी कौन है और क्या यहाँ पर होता है। तो वो देखकर यमराज भी इतने प्रभावित हो गए, ब्रह्मा जी इतने प्रभावित हो गए, तो यमराज जी ना वहीं पर रुक गए। होता है ना कभी कि पुलिस लोगों को देखो दिन रात दंड देके देके बाद में चाहिए ना छुट्टी थोड़े दिन, रोज गुंडों को मिलना है, रोज अरेस्ट करना है, रोज फटके मारना है, रोज उनका कस्टडी में रख के उनका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, रोज कोर्ट में प्रस्तुत करना है, ऐसा काम नेगेटिव कर कर के कभी कभी दिमाग परेशान हो जाता है। सोच रहे कभी अभी जाके कर्जत में जाके बटाटा वटा खा के आते हैं चलो थोड़ा सा, या लोनावला में जाके भुट्टा खा के आते हैं, ऐसा दिमाग कभी इतना भूखा हो गया ना कि जरा हल्का करके आते हैं। तो यमराज जो दिन रात दंड देने का काम करते हैं वो सोचते हैं कि अभी भगवान के धाम में ही रहे, अच्छी तरह से बगीचे में बैठ के भजन करें ताकि थोड़ा दिमाग शांत हो जाए। तो जो बगीचा उन्होंने बनाया उसको उड़िया भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूँ बिना डायरेक्टली बता नहीं सकता क्या, लेकिन ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ यस, ऐसा प्रश्न पूछने के बाद आप थोड़ा सा सोचेंगे और उसके बाद जवाब दूंगा तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप ऐसे कई शब्द बोले, कई शब्दों की व्याख्या किया, बोलते जाइए हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन बीच में आपको पूछा तो आप सोचेंगे कि क्या होगा उसका उत्तर, कुछ तो होगा लेकिन मुझे पता नहीं है तो क्या होगा क्या होगा, ऐसे सुनते जग जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा उसको कहते हैं टोटा, क्या कहते हैं? बगीचे को उड़िया भाषा में टोटा कहते हैं, टोटा। तो उस बगीचे का नाम पड़ा यमेश्वर टोटा, यमराज ने वहां बैठकर शंकर भगवान का लिंग स्थापन करके उसका पूजन किया और ध्यान किया, तो यम ईश्वर, यमराज के पूजित ईश्वर, जिस जगह बैठकर उसका पूजन किया गया उसका नाम पड़ा यमेश्वर टोटा। उस जगह पर अब ये कभी हुआ, ये घटना सृष्टि के निर्माण में हुआ, एकदम बिगिनिंग में हुआ, बहुत सारे युग बीत गए, उसके बाद में कलयुग आया और उसके बाद में उसी जगह पर कौन आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म किधर हुआ? यस बोलिए, कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? फिर बोले वृंदावन में जन्म हो गया। पक्का वृंदावन में हो कि मथुरा में हुआ? नहीं नहीं दिल्ली में हो गया रहेगा शायद, वो सिटी है ना मेन सिटी, बॉस लोग तो वहीं पर आते हैं सब लोग। किधर हुआ एक्चुअली, कहां पर हुआ? घर में हुआ, बाहर हुआ, आंगन में हुआ, पानी में हुआ, जेल में हुआ, है ना? जेल में जन्म होता है ना, अरे ट्रेन में भी होता है, बस में भी होता है, प्लेटफॉर्म में भी होता है। वो दिन ट्रेन में मन में कितने बच्चे जन्म हो गए पता है आपको? ट्रेन में ऐसा न्यूज आया इमरजेंसी में कि किसी को भी डिलीवरी का पेन हो रहा है, लेबर पेन, तो तुरंत ट्रेन में वो ट्रेन के रेलवे डॉक्टर रेलवे नर्स भाग भाग के आए और प्लेटफॉर्म पे उस औरत को उतारा, प्लेटफॉर्म पे उसका डिलीवरी किया लोगों ने। कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए, 2 लड़के 1 लड़की, ऐसा है। तो लोग बोलने लगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, पेपर में फोटो भी आया, फिर मुकुट उकुट पहना है, ड्रेस वेस पहना है उनको और इस हाथ में रखा है इसे मंदिर जैसी जगह पर, तो ये कहीं भी हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म कहाँ लिया? नवद्वीप धाम में। वो कहाँ पर है? मायापुर में। मायापुर किधर है? वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से 120 किलोमीटर दूर है। कितने लोग मायापुर गए हक में से? जय हो, भक्ति विधान में टिके रहोगे तो एक ना एक दिन जरूर जाओगे। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए इसमें से? हाँ डॉक्टर मीनू भी आए थे उसमें, आप लोगों को सबको आना है, केवल सुनना नहीं है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि सुनेंगे ना फिर वैसा वहाँ लाल रंग के गुलाब खिलते हैं, वहाँ पर पीले रंग का गुलाब भी होता है। हाँ थियोरी अच्छी है, लेकिन जाके देखना भी चाहिए ना कि है कि नहीं। तो यहीं बैठ के कथा सुनते रहेंगे तो अच्छी बात है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं उसके अंदर। लेकिन समझो जो सुन रहे हैं वो ही आपको जाके दिखा दिया तो अलग अनुभव आएगा कि नहीं, अरे आज तक तो सुनते आ रहा था, अभी फर्स्ट टाइम देखा मैंने वो बात जो इतनी साल से सुन रहा था वो सही है। तो वो जगन्नाथपुरी में यमेश्वर टोटा है समुद्र किनारे पे। चैतन्य महाप्रभु कितने साल जिए टोटल अवतार लेने के बाद में? 10, 20, 50, 60, 100, 48 ईयर्स उन्होंने यहां पर बिताए। कृष्ण भगवान ने कितने साल बिताए, जरूरी है कि नहीं जानना? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं, कितने साल रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स रहे, भगवान कृष्ण कितने साल रहे? 125 साल। महाभारत का युद्ध कब हुआ? जब वो 125 साल के थे, तब अर्जुन 72 साल के थे, भीष्मदेव 180 साल के थे। और 125 साल में महाभारत का युद्ध बनाया उन्होंने, युद्ध समाप्त किया, फिर यादव वंश को भी समाप्त किया और खुद भी बाद में चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु के 48 ईयर्स में उन्होंने 24 साल अपने माता पिता के घर में बिताए। 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेकर अगले 6 साल वो भारत में भ्रमण किया उन्होंने कीर्तन करते हुए। उसको कहते हैं मध्य लीला, 24 साल के समय को कहते हैं आदि लीला, प्राइमरी, पहले वाले, बीच वाले का क्या क्या कहते हैं 6 साल को? मध्य लीला। और आखिरी जो 18 साल है उसको कहते हैं अंत्य लीला, एंडिंग पास टाइम्स। तो उन्होंने आखिरी 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। संन्यास लेने के बाद में 6 साल भ्रमण किया, फिर एक जगह पर आके रुक गए वो। और लास्ट टाइम मैंने रथ यात्रा की कहानी बताई थी, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो जो रथ यात्रा हुई थी उसमें क्या क्या विशेष चीज हुआ वो सब लास्ट टाइम समझाया था। लेकिन उन उसके दौरान वो रोज सवेरे जगन्नाथ का दर्शन करते थे, और जगन्नाथ का दर्शन करके जगन्नाथ को दातून है ना, दातून जानते हैं दातून? आप जगन्नाथपुरी गए नहीं होंगे शायद, जगन्नाथपुरी गए हैं आप लोग तो, वो जगन्नाथ भगवान जहाँ खड़े रहते ना उधर नीचे 3 चांदी के आईने रखते हैं बोटे एकदम स्टैंड पर, और वो आईने में जगन्नाथ का मुख देखते हैं और उनको दातून कराते हैं। आईने में सुभद्रा को देखते हैं दातून कराते हैं, आईने में बलराम को देखते हैं दातून कराते हैं, आईने को स्नान कराते हैं, आईने को अभिषेक करते हैं और फिर उनको वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन बाकी सारा काम आईने में करते हैं। तो एक दातून बनता है हर एक व्यक्ति का महाप्रसाद, तो वो जगन्नाथ का महाप्रसाद दातून लेकर चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करने के बाद में दातून लेकर जंगल में रहने वाले हरिदास ठाकुर को मिलते थे। हरिदास ठाकुर कौन है? वो पिछले जन्म के ब्रह्मा जी जो थे उनके अवतार हैं वो, हरिदास ठाकुर। और वो जन्म से यवन थे इसलिए वो सोचते थे कि मैं तो यवन हूँ, पतित हूँ, मैं भक्तों के बीच में रहना नहीं चाहिए मुझे, मेरी छाया भी पड़ेगी तो लोग दूषित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा था मैं रहूँगा आपके साथ लेकिन जंगल में रहूँगा। तो वहाँ पर एक दातून लेकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे जमीन पर गाड़ा था तो वहाँ पर बकुल का पेड़ तैयार हो गया, पूरा सुंदर विशाल ऐसे विस्तार वाला, ऐसे घर जैसे ही बन गया वो, लेकिन फिर भी घर नहीं है। उसके नीचे हरिदास ठाकुर रहने लगे और एकांत भजन करने लगे। लेकिन उनका भजन चैतन्य महाप्रभु को इतना पसंद था कि उस महान भक्त को मिलने के लिए रोज वो एक दातून लेकर जाया करते थे और वो महाप्रसाद हरिदास ठाकुर को दिया करते थे। उसके बाद वो भोजन करते थे, एक जगह है वहां पर काशी मिश्रा का घर ऐसे कहते हैं उसको, उसका और एक नाम भी है गंभीरा। उधर राधा राधा कांत के भगवान के विग्रह भी हुआ करते थे, उस घर में वो रहते थे। और दोपहर को भोजन करने के बाद में वो जाते थे यमेश्वर टोटा में, वहां पर एक भक्त रहा करते थे जो राधा रानी के अवतार थे, उनका नाम क्या था? गदाधर पंडित। राधा रानी स्वयं पुरुष शरीर में प्रकट हुए थे। तो वो गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु का बहुत मित्रता थी, बहुत ज्यादा। और गदाधर पंडित रोज श्रीमद् भागवत पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे सुनते थे। तो उनको पूछते थे क्या सुनाऊं, कभी को मैं भी पूछता हूँ क्या सुनाऊं कहानी आज। वो तो चैतन्य महाप्रभु उनको हमेशा कहते थे कि या तो प्रहलाद की या तो ध्रुव की कहानी सुनाओ। अरे आपके बच्चों को आपने ध्रुव की कहानी एक बार सुना दिया, एक बार प्रहलाद की कहानी सुना दिया और दोबारा बोलने लगे तो बच्चा क्या बोलेगा, मम्मी ये तो हो गया है दूसरा कुछ बताओ। बोलते ना ऐसे, बहुत होशियार होते वो, उनको सब पता होता है, कभी भूलते नहीं वो। कितना नींद भी आएगा तो बोलेंगे मम्मी दूसरा बताओ ना कुछ, अच्छी नींद नहीं आ रही है जल्दी बताओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर रोज आकर कम से कम 250 बार एक ही कथा बार बार सुनते थे। तो हमारे दृष्टि से आप सोच सकते हो कि वो पागल होंगे शायद, वो ही कथा सुनते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो रोज उनको उसी कहानी से नया नया अमृत तुल्य स्वाद का अनुभव होता था। और अब आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह कैसे रहे, मैं देख रहा हूँ क्योंकि केवल मैं ही सब आपको देख रहा हूँ, बाकी सब लोग मुझे अकेले को देख रहे हैं, मैं आप सबको देख रहा हूँ। तो किसकी पलके अस्त होने जा रही है इसका दर्शन मुझे हो रहा है। पास में और दूर में जो संघर्ष कर रहे हैं अपने पलकों के साथ कि तुम गिर न जाना, बस कुछ भी करो खड़े हो जाना बस। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रोज उसका दिव्य आनंद करते थे, उनको ही पता है उनको दिव्य आनंद क्या मिल रहा है। हाँ तो ये मैं पलकों की कहानी क्यों बताई, क्योंकि आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु डांस करते हुए कथा सुनते थे, सो हैप्पी। कथा करने वाले बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पुस्तक से पढ़ रहे हैं, कोई सनसनीखेज एक्शन पैक ड्रामा नहीं बता रहे, वैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन सुनने वाले जो है ना वो डांस करते थे, आंखों से आंसू लेकर नाचते थे, और बताओ और बताओ, फिर वही कथा वापस बताते थे उनको। ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित। हाँ हमारे लिए जो वो चीज़ बोरिंग है, जैसे किसी किसी को मैथमेटिक्स बोलते क्या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्यों बनाया, कौन था वो दुर्भागी व्यक्ति जिसने मैथमेटिक्स बनाया, कौन से दुर्घटना की घड़ी में बताया बनाया, कौन से अशुभ घड़ी में बनाया। लेकिन कुछ कुछ लोगों में, कुछ कुछ लोगों को जैसे मैं हूँ, मैथ्स हमको इतना पसंद है ना कि रात रात तक हम नींद छोड़ के मैथ्स बनाते। मम्मी बोलती थी बस अभी 11:30 हो गए सो जाओ, अभी कल सुबह करना, नहीं मम्मी और एक पेपर सॉल्व करना है। तो भी वही जिसको इंटरेस्ट है वो व्यक्ति को उसमें बहुत स्वाद आता है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ है वो। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवत के ध्रुव प्रहलाद की कहानी में इतना रुचि थी कि वो दिन रात डांस करते हुए दोबारा सुनाओ और सुनाओ करके सुनाते थे, सुनते थे। तो वो जगह है जहां पर श्रीमद् भागवत की कहानी सुनाई जाती थी रोज, और गदाधर पंडित बड़े प्रेम से सुनाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु अक्सर ना ऐसे आवेश में आते थे, उनको वृंदावन की याद आती थी सडनली। तो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है और कदम के पेड़ है, बंसीवट जैसे बरगद के पेड़ भी, जहाँ पर बहुत लीला हुई है, बंसीवट पे भगवान ने बंसी बजाई है, कर कदम के पेड़ के नीचे भगवान ने बंसी बजाई है, गाय चराई है, क्या क्या नहीं किया, अनंत लीलाएं हैं। तो वहाँ पर एक चातक पर्वत है, वो जो ना उसको कहते हैं सैंडून, सैंडून यानी क्या, रेती से बना हुआ। रेती जब बहुत उड़ती है ना तो कभी 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 वो जमा जमा होकर एक टेकड़ी बनती है उसकी, तो वैसा एक टेकड़ी वहाँ बनी हुई थी चातक पर्वत, बाजू में एक पेड़ था बरगद का, और रोज देखते हैं उसको। लेकिन आज उनको देखकर उनको गोवर्धन की याद आई और बंसीवट की याद आई, तो इससे भागे वो पागलों की तरह, इससे भागे कि गोवर्धन समझकर उसको गले लगाने लगे पर्वत को। तो भक्त लोग भाग के उनको संभाल रहे, महाप्रभु भागो मान प्लीज, अपने आप को संवारो, तो बेहोश होकर गिर जाती उधर। और कभी कभी कृष्ण कहाँ है, कोथा है कृष्णा, कोथा है कृष्णा करके जमीन को खोदते थे ऐसे आवेश में आकर, ऐसे अपने नाक हाथ से। तो उनको गदाधर पंडित रोकते थे कि अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। सब भक्त लोग चिंतित होते थे कि इनका आवेश आ गया। तो फिर एक बार वो नदी समुद्र में घुस गए, एक बार कृष्ण को पुकारते हुए आया, याद आ रहा है आपको, और समुद्र में जाके गिर गए और बेहोश हो गए उधर समुद्र में। तभी सब लोग ढूंढ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए। तो किधर भी पूरी क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, तो उनको लगा भी समुद्र किनारे जाके देखते हैं उधर उधर होंगे, समुद्र किनारा पूरा छान मारते हैं तो किधर भी मिलते नहीं है। तो गए किधर, कहाँ गए। तो इतने में ना एक आदमी मिला उनको, बोला कैसे बात कर रहे हैं, मैं ना हरिबोल मैं ना मंगलवार को हरिबोल संध्या जागृति हरिबोल कथा हरिबोल कर रहा हूं, समझ में आया। ऐसे जो उसको पूछ रहे हैं कि कहाँ आपने चैतन्य महाप्रभु को देखा है, तो वो इस तरह से जवाब दे रहा है जो भी उसको बोलना है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे ही बोल रहे। तो भगवान के जो भक्त थे ना चैतन्य महाप्रभु, बड़े होशियार थे, वो बोले यही कहीं पास में चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आवेश में आते हैं, कृष्ण की याद में आते हैं, उनके संपर्क में कोई आता है उसकी ऐसी हालत हो जाती है, बिल्कुल समझ जाते हैं कि यस इनके पास में कहीं ना कहीं है वो। तो उसको खोद खोद के पूछते हैं, थोड़ा सा प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं मन में कि मैं, मतलब बीच में हरी हरी बोलते हुए बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन बीच में 50 बार हरी हरी बोलते हुए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आज जब मछली पकड़ने गया था, जाल डाला था, तो जाल में एक सोनेरी बड़ी मछली आ गई, वो 7 फुट 6 इंच की है, बोल रहे इतनी बड़ी, चमकते हुए प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह शरीर है, उसके अंदर इतनी बड़ी मछली है, और उसको जैसे ही मैंने निकालने के लिए, मतलब ये तो मछली हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वह जाली से निकाल कर वापस समुद्र में डालने के लिए जब मैंने उस मछली को स्पर्श किया, तब से मेरी ये अवस्था हो गई है, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ, जैसे हाथ कभी होता ना ट्रेमर, जैसे ऐसे समझ में आता है कि हाथ ट्रेमर में, लेकिन हाथ अब यू कैनॉट होल्ड, वो ट्रेमर में रहता है। तो किधर है पूछते वो, तो वो जाली समुद्र के अंदर होती है, वो खींच भी सकता नहीं उसको, तो देखते हैं तो क्या, वो जाली के अंदर चैतन्य महाप्रभु, उनको बाहर लाते हैं तो भी वो बेहोश अवस्था में, तो उनके कान में जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर महाप्रभु होश में आते हैं और सबको डांटने लगते हैं, क्यों आपने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं तो वृंदावन में था, कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे थे, राधा रानी उनके साथ में थी, गैया सब सुन रही थी, ग्वाल बाल सब नाच कर रहे थे, गोपियां सब नाच कर रही थी, इतना सुंदर सुगंध बह रही थी, इतने सुंदर वन में था मैं, श्री कृष्ण के दर्शन में मैं इतना आनंद से मशगूल था मैं, क्यों आपने मुझे डिस्टर्ब करके यहाँ लाया। खैर कोई बात नहीं, अभी आ ही गया हूँ तो ठीक है। ऐसे घटनाएं बार बार चैतन्य महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुर में होती रही। तो एक दिन वो ऐसे ही आवेश में आए, तो चातक पर्वत के पास में गए और जमीन खोदने लगे, बहुत देर खोदते रहे, अचानक ना उनके शरीर को ऐसे, हाथ को ऐसे कुछ शार्प कुछ लगा, ऐसे समझो जमीन के अंदर माटी के अंदर होगा ना, तो मैं यहां से ऊपर से माटी निकाल रहा हूं, लेकिन जैसे ही बीच में आएगा तो लगेगा ना हाथ को, तो ऐसा ही कुछ हार्ड चीज उनको हाथ को लगी, तो एकदम वो आवेश उनका समाप्त हो गया और वो होश में आए हो। तब तक बाकी सारे भक्त उनको ऐसे पकड़ रहे, मत मत करना मत करना, ऐसे संभालो अपने आप को, ऐसे कर रहे। तो वो होश में आते हैं, कहते हैं कि देखो आज मुझे एक अद्भुत चीज यहां मिली है, इसको खोदो। तो खोदते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती है, बहुत ही सुंदर मूर्ति, काले पत्थर वाली, और वहीं पर वो मूर्ति गदाधर पंडित को भेंट देते हैं, बोले गदाधर तुम्हारा कृष्ण पर इतना प्रेम है इसलिए तुम्हें मैं मूर्ति भेंट दे रहा हूं, उसका नाम गोपीनाथ रख देते हैं। आप लोग गए हैं ना ऊपर, याद है आपको टोटा गोपीनाथ, यमेश्वर टोटा गार्डन के अंदर जो गोपीनाथ जी विराजमान है, उनको जो गार्डन में बैठे हुए गोपीनाथ जी, इस रूप से उनको टोटा गोपीनाथ के नाम से जानते हैं। और उस मूर्ति का इतिहास क्या पता है आपको, जब भगवान का ब्रह्मा का वार्तालाप हुआ ना, तो भगवान ने ब्रह्मा को अपना एक विग्रह दे दिया भेंट में कि इसकी पूजा करो आप, वही विग्रह है वो। वो कालांतर में ब्रह्मा जी के पास से घूमते 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 लुप्त हो गया था, वो जगन्नाथपुरी के रेती के अंदर चैतन्य महाप्रभु दोबारा प्रकट किया। तो सृष्टि के निर्माण के समय भगवान ने सृष्टि के प्रथम जीव को पूजन करने के लिए दिया हुआ विग्रह था वो, तो दोबारा प्रकट हुआ और उसका गदाधर पंडित ने भजन करना शुरू किया। अब यथावकाश चैतन्य महाप्रभु चले गए, बीच में मुझे एक और एक कहानी याद आ रही है, बताता हूँ आपको। ऐसे वृंदावन में एक भक्त थे, वो तो अभी अभी की बात है 50 या 60 साल पुरानी ओनली, और उस व्यक्ति को मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी जी, जिनको आपने भी दर्शन किया है, वो उनको मिले हुए हैं। वो व्यक्ति राजकुमार था उस समय, थे राजा थे ना बहुत सारे, छोटे छोटे क्यों राजा थे बहुत सारे, वैसे एक परगणे के राजा का राजकुमार था वो, और वो राजा अपनी रानी को लेकर एक बार वृंदावन दर्शन करने के लिए आए थे अपने सारे सेना के साथ, ऐसे बड़े लवाजमे के साथ। तो उस समय वृंदावन का दर्शन करके ये राजकुमार इतना मोहित हो गया कि माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता ने बहुत जिद किया चलो, तो वापस ही नहीं गया वो। उनका नाम था घनश्याम, राजकुमार घनश्याम। माता पिता दोबारा बोले थोड़े दिन रहने दो सर, उसको दिल बहलाने दो, फिर ले जाएंगे उसको। कई बार लौट के आए, कई बार उसको मिले, तब तक तो बाबा जी बन गया था वो, लेकिन कितना विनती किया तो वापस ही लौट के नहीं आया, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया उसको। और वो घनश्याम जो था वो घनश्याम बाबा बन गया, जमुना किनारे रहता था। और जमुना किनारे की रेत में बैठकर ना ऐसे ऐसे हाथ घुमाता था और लिखता था राधे। क्या लिखता था? सब लोग बोलो, जोर से बोलो, हर बार राधे राधे लिखता था। फिर उसको पहुंचता था, फिर वापस राधे राधे लिखता था। ऐसे कई घंटों तक लिखते रहता था वो। तो जितनी बार आप हाथ घुमाओगे रेटी यहाँ से वहाँ हो जाएगी ना, मतलब लेवल तो नीचे जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन बहुत घंटे के बाद थोड़ा सा एक इंच नीचे जाएगी ना। ऐसे एक दिन मुझे कई घंटे राधे राधे लिखा। क्या लिखा? तो अचानक उसके हाथ में ऐसा लगा, टोकदार नोकदार चीज लगी, तो बड़ा कुतूहल हुआ उसको। तो उसने और ऐसे अभी ऐसे ऐसे नहीं किया, हाथ से खोदा बहुत, तो वो एक मुकुट के अग्रभाग की तरह था। तो उसने और खोदा तो और एक मुकुट के अग्रभाग जैसा और एक चीज और मिली उसको। कुछ देर बाद, मतलब छोटी होगी ना उससे, बहुत देर खोदा तो राधा कृष्ण की मूर्ति मिली, पूरी यमुना के रेत से बाहर निकली। आज का जो चीरघाट है ना उसके सामने जगह है वो। और उस कृष्ण के मूर्ति के नीचे लिखा था गोपी जन वल्लभ, और राधा के नीचे लिखा था राधा। वो कहाँ लिखते हैं मालूम है? जिसमें एक स्टैंड होता है, स्टैंड मूर्ति एक आसन पे खड़ी रहती है, तो जिस आसन पे कृष्ण खड़े थे उधर लिखा था गोपी जन वल्लभ। गोपी जन यानी गोपियों के, वल्लभ यानी प्रिय, और राधा। तो बड़े गदगद हो गए वो, उन्होंने अपने घर में आकर उनका सेवा शुरू किया। हमारे गुरु जी की किताब है ना, क्या नाम है उसका, जर्नी होम, हिंदी में क्या नाम है, अनोखा सफर, मराठी में क्या नाम है, त्रिशार्थ पति, गुजराती में क्या नाम है, पेलू पारनु प्रवास, ऐसे हर भाषा में वो किताब बनाई गई है। बहुत सुंदर किताब है, आप लोग उसको कहानी के रूप में पढ़ने के लिए खरीद सकते हो, अद्भुत रोचक कहानी है उसके अंदर। उसके अंदर इसकी कहानी है घनश्याम बाबा की। तो मुझे याद क्यों आई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी जगन्नाथपुरी के रेत में से गोपीनाथ जी को प्रकट किया था, वैसे ये घनश्याम बाबा ने वृंदावन की जमुना की रेत से गोपीजन वल्लभ को प्रकट किया था। कई साल के बाद में घनश्याम बाबा जो है ना वो गुजर गए, और हमारे गुरु जब वृंदावन में थे 19 साल की उम्र में तब इनको मिले थे। और क्या भक्ति थी उनकी, किसी एक घर के आंगन में एक कबड़ के अंदर उसको रखते थे, उसकी पूजा करते थे, और ऐसे निकाल निकाल कर अपने हाथ से राधा और कृष्ण को खिला देते। वो बहुत 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 ही श्रेष्ठ भक्त थे। लेकिन तब हमारे गुरुदेव 19 साल के थे, फिर वो उधर प्रभुपाद जी की मुलाकात हुई तो उनको मिलकर फिर वो अमेरिका चले गए, और 14 साल के बाद लौट के आए। और जब वापस 14 साल के बाद लौट के आए तो हमारी उनकी मुलाकात हुई, हम डॉक्टर सब भक्तिवेदांत के पहली बार महाराज जी से मिले। तो महाराज जी को बड़ा उत्सुकता थी कि मैं वृंदावन चला जाऊँ और वो घनश्याम बाबा को मुझे मिलना है, और बहुत लोगों को मिलना है जिनको पहले मिला था 14 साल के बाद। लेकिन जब हम गिने चुने भक्तों को लेकर गुरुदेव वृंदावन लौट के आए ना, तो हमें उस गली में ले गए वो। कहाँ ले जा रहे हैं आप, एक घनश्याम बाबा को मिलाना है आपको। उन्होंने इंक्वायरी किया वहाँ पर, तो इनको हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती बताने वालों को। उन्होंने पूछा घनश्याम घनश्याम, तो उन्होंने कहा गोलोक गोलोक, मतलब गोलोक धाम चले गए वो, निकल गए यहाँ से। तो फिर प्रश्न ये हुआ कि वो उनकी जो मूर्तियां थी वो किधर गई, तो बोलते पता नहीं कोई ले गया होगा, ऐसे मतलब उनको जानकारी नहीं थी। बहुत इंक्वायरी किया, वो मूर्ति किधर गई, मूर्ति किधर गई, मूर्ति किधर गई, तो नहीं मिली वो। फिर महाराज लौट के चले गए, फिर हम यात्रा लेके गए, फिर कई बार यात्रा लेके गए, हर बार पूछते रहे कि वो मूर्ति कहाँ है, मूर्ति कहाँ है, लेकिन वो मूर्ति मिली नहीं। मतलब महाराज जब वापस इंडिया में आए उसके बाद भी बहुत साल के बाद में भी मूर्ति का पता नहीं चला। फिर एक यात्रा में महाराज ने हमको बताया कि आप जाओ मूर्ति को ढूंढ कर निकालो। बोले महाराज आप इतने साल से ढूंढ रहे हो, मैं कहाँ से ढूंढूँ अभी, आप कुछ गाइडेंस तो दे दो। तो उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया, और वो गाइडेंस लेकर उसका क्लू लेकर कई जगह पर हम गए और बहुत सारे प्रश्न पूछे, और लौट के आया कि वो किसी को पता ही नहीं। तो महाराज बड़े चतुर थे, महाराज ने कहा कि आप जवानों को मत पूछो, आप बूढ़े बूढ़े कितने लोग हैं उनको पूछो, ढूंढ ढूंढ के घर में जाके पूछो, कोई चाचा कोई दादा कोई परदादा है कि आपके घर पे, अगर होगा तो उनको जाके पूछना। ऐसे ही फिर सेकंड टाइम गए पूछने के लिए, तो एक दाढ़ी वाले बड़े बुढ़े संत मिले। उन्होंने कहा है ना गोपीचंद वल्लभ की मूर्ति, वो आगे वाले सरदार जी का मंदिर है उसके अंदर है। फिर हम ढूंढे ढूंढे सरदार जी के मंदिर ढूंढे ढूंढे गए कहाँ पर है, जो सरदारों के गुरुओं के फोटो थे, बहुत सारे चीजें थी उसके, छोटे से जिस जगह पर वो राधा गोपीचंद वल्लभ की मूर्तियां थी, और उस समय 2500 लोग यात्रा में आए थे। तो जब उनका दर्शन किया तो मैं गदगद हो गया एकदम, कह रहे बाप रे इतने साल से ढूंढ रहे उनको, आज प्राप्त हो गए। कन्फर्म भी किया, गोपीचंद वल्लभ लिखा है नीचे। तो वो लेकर हम लोग, मैं पता करके वो लेकर वापस आश्रम में भागा महाराज को, महाराज मिल गया, मिल गया, यूरेका यूरेका, मिल गए भगवान की मूर्ति मिल गई। तो महाराज ने कहा अच्छा एक काम करो, 2000 भक्तों को सब लेकर जाओ भी आप, जुलूस निकाल के मैं पीछे पीछे आता हूँ। फिर 2000 लोगों का गली गली में ऐसा ऐसा घुमा घुमा के फिर वो मंदिर में पहुंचे हम लोग, और सब लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद में महाराज जी वहां पर आए, और महाराज जी ने वहां पर जो कथा किया उस कथा में महाराज इतने रोए इतने रोए इतने रोए उस घनश्याम बाबा की याद करते करते, कि कैसे भक्त थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके साथ में कैसा संबंध हुआ, आदान प्रदान कैसे हुआ। जैसे कि आपका समझो आईना है, समझो है ना, तो मेरे पिताजी का समझो आईना है। अब पिताजी जब चले जाते हैं तो हम लोग आईने को जलाते नहीं है, वो निकाल के रखते हैं उनकी याद में। और जब भी कबाड़ खोलकर आईना देखते हैं, दुनिया में तो बहुत सारे आईने हैं, चश्मे की दुकान में 500 आईना होते हैं, लेकिन उन आईने को देख के कोई रोता है क्या? लेकिन ये आईने को देख के आप रोते हो, क्यों? क्योंकि ये आईना आपको पिताजी की याद दिलाता है। वैसे वो मूर्ति को देखकर महाराज जी को घनश्याम बाबा की इतनी याद आई, इतनी याद आई, उन्होंने सारी कहानियां सुनाई, और कहानी बताते बताते लाल होकर इतने रोए कि ऐसे कथा में कभी रोए ही नहीं आज तक। तो ये भगवान और अपने भक्त के बीच में संबंध की कथा है। तभी जैसे गोपीजन वल्लभ भगवान घनश्याम बाबा के लिए जमुना जी के रेत से प्रकट हो गए, वैसे जगन्नाथपुरी के रेत से गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। तो बहुत साल तक गदाधर पंडित ने उनकी सेवा की, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सेवा की। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए तो गदाधर पंडित ना बहुत ही जल्दी बुढ़े हो गए। कितने लोगों को पता है कि एक जवान आदमी जब उसके पति गुजर जाता है तो 5 साल के अंदर एकदम बुढ़ी हो जाती है औरत, वो मन से ही दुख से ही बुढ़ी हो जाती है। किसी प्रिय व्यक्ति का खोना और उसमें दुख में ना पूरा यौवन समाप्त हो जाता है कुछ ही साल के अंदर। वैसे एकदम युवावस्था में थे वो गदाधर पंडित, लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु चले गए ना कुछ ही साल में एकदम भयंकर वृद्ध हो गए। वो इतने वृद्ध हो गए कि उनको ना खड़ा होना भी मुमकिन नहीं हो गया। अभी माला बनाना, रोज भगवान को पहनाना, श्रृंगार करना, पीछे से वस्त्र घुमाना, गांठ लगाना, पिन लगाना, ये सब उनको जमना ही लगा। तो वो सोचा कि अभी मैं गोपीनाथ की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अभी कैसे करूंगा सेवा। तो वो तय कर लेते, हाँ सब लोग ध्यान से सुनो, अभी सोना नहीं, सब लोग सुनिए। तो वो तय कर लेते कि अभी कल से मैं गोपीनाथ जी की सेवा बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं भी कर ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूँ मैं तो, वो गले में हार डालने के लिए मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, उतना मेरा हाथ ही नहीं पहुंच सकता। तो तय करके किसी को तय कर लेते कि तुम कल से करना, अभी कल से दूसरे को देना है। तो आज रात में गोपीनाथ जी स्वप्न में आते हैं, इतना प्रेम था उनके ऊपर, साक्षात प्रकट हो गए गोपीनाथ जी और कहने लगे गदाधर मैं केवल तुम्हारे हाथ से सेवा कर लेना चाहता हूँ और किसी के हाथ से नहीं। बोले कैसे करूँ मैं सेवा, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर अकड़ गए, गुड़गे क्या कहते हैं उसको, जॉइंट अटक जोड़े अकड़ गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मुझे दिखाई पड़ रहा है ठीक से, अभी क्या करूं मैं। उन्होंने कहा अगर तुम्हें उठने में तकलीफ है ना तो मैं छोटा हो जाऊंगा, डोंट वरी। तो उनको लगा भगवान तो ऐसे ही बोल रहे, छोटे कैसे हो जाएंगे वो, ऐसे बोल के स्वप्न समाप्त होता है। दूसरे दिन जब जाते हैं ना वो भगवान के पास में तो बहुत भगवान छोटे दिखते उनको, अरे स्वप्न में जो सच कैसे हो गया। तो जब उनके वस्त्र उतार के वो नया वस्त्र पहनने के लिए तैयारी करते हैं तो क्या देखते हैं कि पत्थर की खड़ी हुई मूर्ति जो है वो पलटी मार के बैठ गई है ऐसे। अभी वही मूर्ति जो है ना वो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन भगवान ऐसे पूरा पद्मासन में बैठ गए हैं। तो पद्मासन में आप भी बैठे हो, आपकी हाइट कितनी है, 5'10" तो होगी ना, अभी कितने लग रहे हो आप, 3 फिट के लग रहे हो, वैसे भगवान हो गए। फिर आगे सारा समय गदाधर पंडित ने क्या किया, बैठ के भगवान का सेवा किया, भगवान भी उसी हाइट के, वो भी उसी हाइट के, वो भगवान का सेवा। ये है प्रेम, ऐसा प्रेम होना चाहिए। और ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति को ना वो प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे व्यक्ति के लिए वो प्रतिमा नहीं रहते, भगवान मूर्ति नहीं रहते, विग्रह नहीं रहते, लकड़ी के पत्थर के इसके पेंटिंग वाले नहीं रहते। ऐसे भक्त को वो साक्षात भगवान हो जाते हैं, साक्षात प्रकट होके बात करते हैं उनसे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गदाधर पंडित, ये सबसे उनके विग्रह बात करते थे। हम लोग क्या बकवास करते हैं हरे कृष्णा वाले लोग, जिनकी सब कहानियां में तो सब भगवान इनसे बात ही कर रहे हैं, अरे हम इतने भगवान को देखते कोई बात नहीं करते हमसे। अरे उतना भक्ति तो होना चाहिए ना, भगवान के हमारे गुलाम है क्या कि तुमको विश्वास नहीं तो विश्वास दिलाने के लिए बात करेंगे तुम्हारे लिए? क्या योग्यता है हमारी उनसे कि वो हमसे बात करें? अरे वो उनसे बात करते जो उन पर प्रेम करते हैं, तुम तो संशय करने वाले और टीका करने वाले और आर्ग्यूमेंट करने वाले, जो उनको विश्वास ही नहीं है उनसे क्यों दर्शन करें? गुलाम है क्या हमारे वो? ऐसे एक व्यक्ति ने अमेरिका में कहा कि अगर भगवान है, मैं बिल्कुल नहीं मानता वो है, अगर वो है तो मैं 110 मंजिल के बिल्डिंग से कूदूंगा, अगर वो है तो मुझे उसको बचाना चाहिए। ऐसा करके ऊपर चला गया, वो ऊपर से भी अनाउंसमेंट किया अब मैं कूद रहा हूं, कूद गया वो मर गया, भगवान बिल्कुल नहीं आया उधर। भगवान का गुलाम है क्या उसके कि वो ऐसा कुछ पागल जैसा आला अनाउंसमेंट करेगा तो भगवान उसको सर्च करने के लिए आप सामने आ जाए? तो मर जाना ही अच्छा है, मर गया वो। तो हमारे ऐसे फालतू चैलेंजेस को जवाब देने के लिए भगवान के पास टाइम है क्या? जो प्रेम करता है उसके लिए बहुत टाइम है भगवान के पास। देखो स्वप्न में आके समझाया और बैठ गए वो, आज भी आप जाएंगे ना वहां पर, कितने लोगों ने दर्शन किया है उधर? आपने दर्शन किए जगन्नाथपुरी में बैठे हुए भगवान गोपीनाथ जी का? अगली बार जाना और दर्शन करना जरूर, हम हमारे साथ में चलना। और वही जो तोटा गोपीनाथ है उसी के शरीर में चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए थे, तब वो खड़े थे क्योंकि बैठे थे कभी, उसके बाद में जब विरह में गए तब बाद में बैठे ना, तो जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए एकदम डांस करते करते मंदिर मूर्ति में प्रवेश करके लुप्त हो गए, उसके बाद विरह में बुढ़े हो गए, उसके बाद भगवान बैठ गए। आज भी बैठे हुए घुटने के एक छिद्र है ऐसा, सुबह के मंगल आरती में जब वस्त्र निकाल कर मंगल आरती करते ना, पूरे निर्माल्य कहते हैं उसको, वो निर्माल्य में उनके घुटने में छेद है जहां से चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया था, उसका पुजारी लोग दर्शन कराते हैं। ऐसा अद्भुत है साहब, प्रेम से गदगद हो जाएंगे आप, आपको भगवान पर विश्वास करते हैं, आप भगवान को मानते हैं, उनको पूजन करते हैं, तो ऐसी कहानी जगह पर जाएंगे तो आपका गदगद हो जाएगा हृदय। ऐसा वो स्थान है, बहुत ही सुंदर। क्या नाम बताया उसका स्थान का? हाँ, यमेश्वर तोता या तोता गोपीनाथ। वहां पर राधा गोपीनाथ जी का विग्रह है, बलराम जी हैं, बलराम जी का दो पत्नियों का विग्रह है, वारुणी देवी और रेवती देवी, इनका विग्रह है, गौर निताई का विग्रह है, बहुत सुंदर बगीचा है, उसके अंदर त्राटक पर्वत है, उसके अंदर कल्प वृक्ष खड़ा है, महाप्रभु की लीलाओं के स्थान है उधर, बहुत सुंदर सुंदर, ऐसी पवित्र भूमि है वो। हरिदास ठाकुर का जगह है सिद्ध बकुल, जहाँ पर बकुल वो दातुन लगा था बकुल का, तो बकुल का पेड़ पैदा हुआ था। ये सब स्थाने हेरी वो आमी प्रणयी भक्त संगे, मनुष्य जीवन ये सब स्थानों को प्रेमी भक्तों के साथ में दर्शन करने के लिए दिया गया है, कोई डिस्को पब और ठेक में जाने के लिए नहीं दिया है, मांसाहार करने के लिए, नशा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए नहीं दिया है। मनुष्य शरीर ऐसे सुंदर सुंदर अनंत स्थान है, एक स्थान नहीं है, एक जगह नहीं है, वह उड़ीसा में ही है, बाकी इधर है ही नहीं, सब हर जगह पर है ये, हर जगह पर। महाराष्ट्र में पंडरपुर का जो मंदिर है वहां पर कानोपात्रा नाम की भक्त थी, कानोपात्रा बहुत सुंदर थी, तो कानोपात्रा भगवान के लिए नाचती थी लेकिन उसके नाच का और सौंदर्य का ख्याति सब जगह फैल गई थी। तो एक मुसलमान राजा को मन में उच्छा है उसको उठा के ले आओ, तो उसका सैनिक आए, वो कानोपात्रा कौन है जो भगवान के नाचती है? तो वो पंडरपुर के मंदिर में नाच रही थी, तो जैसे ही वो आए तो समझ गई वो कि अभी ये तो मुझे आक्रमण करने के लिए लेने आए हैं, तो वो नाचते नाचते जाकर पंडरपुर के भगवान के शरीर में विलीन हो गई, वो सबकी आंखों के सामने अदृश्य हो गई, इसलिए उसका नाम है संत कानोपात्रा। कितना भाव था उसका भगवान के लिए, और भगवान ने उसको बचाया उसका बेइज्जती होने से, क्योंकि भक्त ऐसी थी वो, भगवान कोई चमत्कार ऐरे गरे को दिखाते नहीं है, जो भक्ति करते हैं उनके पर प्रेम करते हैं श्रद्धा रखते ना, उनके लिए भगवान क्या चमत्कार नहीं दिखाते, और भगवान को प्रकट होकर चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, बिना प्रकट हुए भी वो चमत्कार दिखा सकते हैं आपके जिंदगी में, अद्भुत चीजों को दिखा सकते हैं, उनका हाथ कैसे आपके जीवन में लगा हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा कि ये उन्हीं का चमत्कार है, ये उन्हीं की वजह से हुआ, आपको अंदर से अनुभूति होगी, दूसरों को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, आपको आपको हृदय में इतनी अनुभूति हो गई बस हो गया आपके लिए, आपके लिए जिसने जो प्यासा था जिसने पानी पी लिया वो संतुष्ट हो गया, उसके लिए संतुष्टि के मतलब क्या है, वो कागज में थीसिस के रूप में लिखने की जरूरत है क्या? जो पानी पी के प्यासा था संतुष्ट हो गया उसको संतुष्टि क्या है प्यास बुझने पर, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ गया खुद ही। तो वैसे हमको भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, दुनिया को श्रद्धा हो या ना हो, सत्संग करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, ऐसे कथाओं को सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, और ऐसे स्थानों का दर्शन करने से श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। जो सुनकर पैदा हुई है वो दर्शन करके प्रत्यक्ष आंखों को देख आंखों से देखकर दृढ़ हो जाती है, और ऐसे दृढ़ श्रद्धा को भगवान फिर दर्शन देते हैं, अनुभव देते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, और वो साक्षात्कार ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।